તારીખ 1/6/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું માઉન્ટ આબુમાં પ્રવચન.
का संग छुड़ाना ભૌતિક પદાર્થો છે, પરિણામ કા સંબંધ છોડા દેના, ડિસ્કનેક્ટ કર દેના, યે કોઈ આસાન બાત નહીં હૈ. પ્રયોગ કરકે દેખ લેના, પરંતુ જિસકો સ્વરૂપ કા નિર્ણય હોતા હૈ, ઉસકો નિશંક રૂપ સે નિર્ણય જબ હોતા હૈ, और उसके कारण से निर्भयता चली जाती है, वो सभी पर पदार्थ से अन्य पदार्थ से अपना परिणाम को छोड़ करके निसंग हो सकता है और स्वरूप संग में लग सकता है. तो स्वरूप संग में लगने के लिए क्या प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया है, इस स्वरूप संघ में लगने के लिए स्वरूप का निश्चय होना जरूरी है, निशंक निश्चय होना जरूरी है. स्वरूप का निश्चय तक ले जाते हैं मुमुक्षु को इस पत्र में. मुमुक्षु को स्वरूप का निश्चय तक कृपालु देव ले जाते हैं. कैसे ले जाते हैं देव, लिखते हैं कि प्रकृति के विस्तार से जीव के कर्म अनंत प्रकार की विचित्रता से प्रवर्तित होता है. प्रकृति का विस्तार है, उद्गल कर्म की प्रकृति की बात चल रही है. प्रकृति मैंने कर्म के अनेक प्रकार, कर्म के अनेक प्रकार का स्वभाव, उसको प्रकृति कहते हैं. उसका बहुत विस्तार है, मैंने अनंत प्रकार है. इसलिए जीव के भाव कर्म, जीव के भाव कर्म भी, भाव कर्म मैंने दोष, भाव कर्म क्या होता है, जीव का दोष होता है. यह दोष अनेक प्रकार का विचित्र विचित्र होता है. जीव के परिणाम में जो दोष होता है वो प्रकृति के उदय में जुड़ जाने से होता है. भीतर में कर्म प्रकृति का उदय आता है, जीव स्वरूप में नहीं जुड़ा होने से, यानी स्वरूप में सावधान नहीं होने से, उसकी स्वरूप की बेसावधानी के कारण से वो प्रकृति के उदय में जुड़ जाता है. तो जैसे प्रकृति के उदय में जुड़ जाता है वैसा ही उनको दोष होता है. जैसे क्रोध प्रकृति में जुड़ा, क्रोध हो जाएगा. लोभ प्रकृति में जुड़ने से लोभ होगा परिणाम में. ऐसे जैसे जैसे प्रकृति के उदय में जुड़ान हुआ, जुड़ना हुआ, वैसा जीव के परिणाम का दोष हो जाएगा. ऐसे दोष के अनंत प्रकार है, चित्र विचित्र बहुत है. और इसलिए दोष के भी अनंत प्रकार, दोष भी अनंत प्रकार के भाषित होते हैं, अनंत प्रकार के दोष समझ में आते हैं, समझ सकते हैं. तो अनंत प्रकार के दोष से हमारा उतना प्रयोजन नहीं है जितना प्रयोजन मूल दोष से है. क्या सबसे बड़ा दोष है, देखिए दोष मिटाने का जो प्रकरण है ना, छोटे छोटे तो उसको पहले नहीं मिटाना है, खास करके ये पॉलिसी ज्ञानियों की है, तीर्थंकरों की है और जैन दर्शन में ही है, अन्य दर्शन में नहीं है। आप कहेंगे कैसे, सुबह एक दृष्टांत दिया था, तो और दृष्टांत देता हूं कि मुसलमानों में जो लोग हज करके आदि बनते हैं वो ब्याज खाने का दोष नहीं करते क्या, उनको मनाई कर देते हैं कि आपको अपनी संपत्ति मुड़ी का ब्याज खाएंगे ना तो पाप लगेगा, पाप से आपको वो पाप नहीं करने का है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे शराब के पास बिना ब्याज पैसे रख देते हैं और उनसे वो शर्त करते हैं कि देखो हमारे पैसे आपके यहां बिना ब्याज रहेंगे, लेकिन जब हमारे बिजनेस का मौका आएगा, सीजन आएगी, तो हमको पैसे उतने जरूर पड़ेंगे कि हमारे पैसे तो हम उठा लेंगे, लेकिन कुछ रकम आपकी भी लेंगे, उस वक्त ब्याज देंगे भी नहीं। क्या हुआ, हो गया वो का वो रास्ता, क्या व्यापारी मानस होता है, हिसाब किताब तो सब जानते हैं कि आजकल ब्याज पर तो बैंकें चलती है, देखो ये तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है आजकल, इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाने से बहुत बड़ा फैक्टर हो गया वो। अब वो ब्याज नहीं खाने की बात वो सहन तो नहीं कर सकते, किस आधार पर सहन करें, लेकिन वहां प्रतिज्ञा लिया है तो दूसरा रास्ता निकालता है, इधर से ब्याज लेना नहीं उधर ब्याज देना नहीं। बात तो क्या है कि मामूली दोष है, ब्याज खाना कोई बड़ा दोष नहीं है, लेकिन उन लोगों के धर्मगुरु जो होते हैं उनको बड़ा दोष दिखा करके उसे रोक लेते हैं। तो छोटा दोष को तो रोक लिया और बड़ा दोष का विचार भी उनको आएगा नहीं। ये भूल सभी धर्म अन्य धर्म मत में होती है। जैन धर्म की नीति पॉलिसी बिल्कुल अलग है, वो तो सबसे बड़ा दोष पहले छुड़ाते हैं, यानी जीव की और दोष की परस्पर लड़ाई चलती है भीतर में। पॉलिसी लड़ाई में क्या होनी चाहिए कि सबसे जो समर्थ है, राजा है, उसको मारो, सैन्य भगने लगेगा, सैन्य के सैनिकों को मारने लगेंगे तो कितने भी मर जाएंगे, लेकिन राजा जिंदा है वहां तक लड़ाई चालू रह जाएगी। पहले राजा को मारो, सरदार को मारो। वैसे यहां डूबो, अनंत प्रकार के दोष का सैन्य है, उसमें सबसे पहले राजा को, और वो राजा कौन है, मोह राजा है। कौन है, मोह राजा है। यद्यपि मोह में दो प्रकार है, दर्शन मोह और चारित्र मोह, उसमें भी दर्शन मोह राजा है, चारित्र मोह राजा नहीं है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की ये पॉलिसी को जो नहीं समझते ऐसे लोग छोटे छोटे दोष को पहला मारने का उपाय खोजते हैं और इलाज भी कर लेते हैं और बड़े दोष वैसे के वैसे रह जाते हैं, तो फिर वो क्यों वो परिस्थिति हो जाती है। दृष्टांत पेड़ के साथ है कि जिस पेड़ का मूल सबूत है, मजबूत है, उसके आप पत्ते कितने भी तोड़ लो नहीं, पत्ते आ जाएंगे थोड़े दिनों में, और जिस पेड़ का मूल कट गया या जल गया, उसके पत्ते कितने भी हो और हरे भरे भी हो, लेकिन थोड़े समय में वो सब सूख जाएंगे, सबके सब सूख जाएंगे। तो दोष का मूल काटना चाहिए, यानी ये सबसे बड़ा दोष है, उसको उसका अभाव करना चाहिए, यानी दर्शनों का अभाव करना चाहिए। अब दर्शनों बड़ा दोष है, इसका मतलब क्या है कि उसकी ताकत, उसकी शक्ति ज्यादा है, वो बलवान दोष है। बलवान को मारना हो तो वैसे तो बलवान नहीं मरता, क्योंकि बलवान है, लेकिन अगर इसको कमजोर किया जाए तो फिर मारना आसान पड़ेगा। जैसे कोई पहलवान हो तो पहलवान के पास सामान्य मनुष्य तो हार जाएगा, लेकिन पहलवान को बीमार कर दिया तो फिर उसको मारना भी आसान हो जाएगा। ऐसे दर्शनों को कैसे बीमारी लागू हो पर वो कैसे कमजोर हो, यही रास्ता, यही इलाज ज्ञानियों ने अपने अनुभव से खोजा है, ढूंढा है और उस पर मार्गदर्शन भी दिया है। ऐसे विषय में ये पत्र चला है। हाँ, रणनीति है, लड़ाई की नीति है। तो कहते हैं कि सर्वसे बड़ा दोष यह है कि जिससे जिस दोष बड़ा होने के कारण से मुमुक्षुता, तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न ही नहीं होती, अथवा मुमुक्षुता ही उत्पन्न नहीं होती। तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न हुए तो जीव को ये दर्शनों का अभाव हो जाता है, दर्शनों का नाश हो जाता है, और मुमुक्षुता हुए तो दर्शनों बीमार हो जाता है, दर्शनों निर्बल हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा दोष यह हुआ कि मुमुक्षुता में जीव नहीं आया। मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षुता कहते हैं, मोक्षेच्छा जिसको कहते हैं, मोक्ष की इच्छा उसको कहते हैं मुमुक्षु। तो मोक्ष की इच्छा दो शब्द का एक शब्द बना लिया मुमुक्षु। मुमुक्षु मैंने कोई भी धर्म साधन कर ले इसलिए मुमुक्षु है, वो बात नहीं है। सिर्फ मोक्ष चाहिए, मात्र मोक्ष अभिलाष, उसको मुमुक्षु कहते हैं। पर मात्र मोक्ष अभिलाष होते हैं तो उस अभिलाषा के कारण से मुमुक्षु की भूमिका के योग्य दूसरे दूसरे परिणाम स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। ये बड़ा फायदा है, यानी मुमुक्षु की भूमिका के छोटे छोटे दो सहज ही नहीं उत्पन्न होते, उत्पन्न ही नहीं होते, ये बात बन जाती है मुमुक्षुता प्रकट होने में। लेकिन जीव को मुमुक्षुता नहीं आई। आप ये कह सकते हैं कि भक्ति किया, गुरु भक्ति भी किया, शास्त्र भक्ति भी किया, मैंने और सत्पुरुष की भक्ति भी किया और मोक्ष की इच्छा भी थी हमको, फिर मुमुक्षु कैसे नहीं। वो प्रश्न हो सकता है। तो यहां थोड़ा इस विषय में हमको गहराई से जाना होगा कि ऊपर ऊपर से जो मोक्ष की इच्छा होती है वो कामयाब नहीं है। क्या ऊपर ऊपर से जो मोक्ष की इच्छा होती है, सामान्य मोक्ष इच्छा है, वो अनंत बार नहीं है। लेकिन सच्ची खरी मुमुक्षुता कभी प्रकट नहीं, एक बार भी नहीं हुई। अगर एक बार भी हो जाएंगे तो निवेदा हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ है। सच्ची मोक्ष की अभिलाषा कभी नहीं हुई है। ऊपर ऊपर से इच्छा हुई, उसमें कोई दम नहीं रहा और जीव रास्ता चुक जाता है। पानी की प्यास लगे, हम पानी पानी बोलते रहे और पानी का विचार करते रहे, लेकिन जहां पानी हो वहां जाने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया हमने, तो हमारा विचार और हमारा बोलना किस काम का। तो जिसको सही इच्छा होती है तो प्रयास प्रयत्न पुरुषार्थ प्रयोग ये सबके बिना नहीं रहता। इसलिए इस मार्ग में जो आते हैं उनको सिर्फ विचार चले तो पर्याप्त नहीं है। जब तक जीव प्रयोग में नहीं आता है, प्रयोग पूर्वक के प्रयास और पुरुषार्थ में नहीं आता है, तब तक उनको सच्ची इच्छा है ऐसा नहीं मानना। ठीक। क्या अंतर है? मोक्ष की खरी इच्छा और जो खरी नहीं है ऐसी सामान्य इच्छा, उसमें अंतर क्या है? कि जिसको खरी जरूरत लगी तो पुरुषार्थ के बिना रह सकता, या इनके पुरुषार्थ को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, खुद ही नहीं रोक सकता। दूसरे को तो बात छोड़ो, खुद ही नहीं रोक सकता, ऐसे परिणाम हो जाते हैं। ऊपर ऊपर की इच्छा वाले अनुकूलता प्रतिकूलता को देखेगा, कोई अनुकूलता में फंस करके पुरुषार्थ नहीं करेगा, कोई प्रतिकूलता में, प्रतिकूलता को हटाने के हटाने में लग जाएगा और पुरुषार्थ को तो नहीं करेगा, फिर नहीं करेगा। ये ऊपर ऊपर की इच्छा में उदय का अनुसरण हो जाता है और अपना कार्य रह जाता है। तो ये खरी इच्छा नहीं है, वो खरी इच्छा नहीं है, है? ये मुख्य दोष है, मुख्य दोष है। वही दोष रहा, अगर वो दोष नहीं रहा तो मुमुक्षुता आकर के ज्ञान दशा में आ जाएगा। मुमुक्षुता में आगे बढ़ करके वो ज्ञान दशा को अवश्य प्राप्त करेगा ही करेगा। ये बिल्कुल पूरी चैनल एकदम सिक्वेंस रूप में पूरी चैनल भक्ति ने बता दिया है। सबसे बड़ा दोष यह है, पर ये मोस्ट प्रैक्टिकल है। अपने जीवन में देख लो, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो कि हम घर से बाहर निकलने के पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो चप्पल जूते में पैर जाएगा, तो क्या पहला काम हमने चप्पल जूते पहनने का किया? नहीं। पहला काम कौन सा किया? हमको कहाँ जाना है ऐसा निश्चय करने का काम पहले किया, क्या कर नहीं किया देखो। फिर हम हमारे पैर जूते में डालेंगे या चप्पल में डालेंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल है कि नहीं है? कोई नहीं, खड़ा ही नहीं होगा, बैठा हो तो खड़ा नहीं होगा। और भी देखो, छोटे मोटे काम में हम क्या करते हैं कि पहले हम डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। निर्धार करो कि हमको यह काम इतने पैमाने में करना है, टारगेट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। फिर जो निर्धार किया उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसका अमलीकरण करते हैं। प्रैक्टिकली वही होता है कि नहीं होता है? तो यहां हम बिना निर्धार किए लक्ष्य विहीन प्रवृत्ति कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। लक्ष्य शून्य धर्म प्रवृत्ति, लक्ष्य बिना के बाण की तरह हमेशा ही निष्फल ही रही। इसलिए बहुत अनुभव पूर्वक ये बात का मार्गदर्शन यहां मिलता है कि जीव का सबसे कोई बड़ा दोष है तो यह है कि मुमुक्षुता ही उत्पन्न नहीं होना, यानी मोक्ष का ध्येय उसने निश्चित नहीं किया, मोक्ष प्राप्त करने के लिए निर्धार नहीं किया। ये सबसे बड़ा दोष है। व्रत नियम संयम, शास्त्र स्वाध्याय पूजा भक्ति यात्रा दया दान जब तप जो भी किया बिना निर्धार, लेकिन मोक्ष का निर्धार नहीं किया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मोक्ष का निर्धार होना ये बहुत बड़ी बात है। सबके लिए लागू हो जाएगा कि हम भी कोई धर्म मत में पैदा हुए और इस कारण से वह उस धर्म मत के अनुसार धर्म प्रवृत्ति कर दूसरे सांसारिक कार्य में पूरी जांच तलाश चेकिंग करके काम करेगा। एक धर्म के विषय में अंधश्रद्धा से चल बहुत बड़ा ताजू में धर्म को सस्ता बना लिया। कितना सस्ता बनाया मालूम है? 1 रुपया 1.5 रुपया की तावड़ी भी टकोरा लगाए बिना लेता नहीं कोई लेता है, जांच तलाश इतनी कर लेता है। धर्म को इससे भी सस्ता बनाया, कभी तो जांच तलाश नहीं करता है, हो गया कि नहीं हो गया। बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। क्या लिखते हैं कि बहुत करके मनुष्य आत्मा किसी न किसी धर्म मत में चुके हैं और अतः उस धर्म मत के अनुसार प्रवृत्ति करने का होता है और मानता है कि ये श्रद्धा का दोष, दर्शन मोह का दोष, मानता है कि किसी का नाम मुमुक्षुता है, परंतु किसी का नाम मुमुक्षुता बिल्कुल नहीं है, चाहे जैन धर्म में हो तो भी। अन्य मत की बात छोड़ो, जैन धर्म में भी हम जैन है इसलिए सही है तो गलत बात, जहां तक हमने परीक्षा नहीं किया धर्म के लिए। हम और भी एक प्रश्न कर सकते हो कि पहले तो हम उस धर्म में थे, अब हमने पलटा भी लिया है, हमारे संप्रदाय का धर्म मत हमने छोड़ दिया है, यानी संप्रदाय वालों के अनुसार हम चलते ही नहीं है, हमारी विचारधारा भी हमने बदली है, तो ये बात हमको लागू नहीं होती है। तो हम पूछते हैं कि आपने जो भी विचारधारा का स्वीकार किया उसमें दिमाग भी लगाया कि इसलिए वो खरी विचारधारा है, जब आपको सही विचारधारा मिली भी है मानो तब हम अपनी अपनी श्रद्धा करते हैं, हम चल रहे हैं कि विचार से न्याय से अनेक पड़खों से हमने ये बात सत्य है, ये विचारधारा सत्य है ऐसा सोच समझ करके स्वीकार किया, फिर तो हमारी मुमुक्षुता सच्ची है क्या नहीं है? कि नहीं है। इस विचारधारा में आने वाले भी जब तक प्रयोग में नहीं आते हैं वहां तक भोग संज्ञा में रहते हैं, क्या बात है? फिर से कि जब तक प्रयोग का प्रारंभ नहीं करते और प्रयोग से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं करते तब तक बुद्धिपूर्वक की जांच तलाश को भी भोग संज्ञा कहनी चाहिए। भोग संज्ञा का प्रकारांतर अवश्य है, पहले विचार करके हमने विचारधारा को बदल दिया है और चारों पड़खों से अनेक पड़खों से विचार करने पर ये लगता है कि यही खरी विचारधारा है। तो अभी उठ संज्ञा नहीं है ऐसा नहीं मान लेना चाहिए, ये भूल भी होती है हमारे यहाँ कि हम उठ संज्ञा में नहीं है, हम बराबर समझते हैं उस ज्ञानी उस ज्ञानी उस ज्ञानी उस ज्ञानी इनके विचार के पीछे हम हैं। हम तो देखो ना कृपालु देव का ग्रंथ पढ़ता है तो कृपालु देव को मानते हैं तब तो पढ़ते हैं और वो तो सच्चे ज्ञानी थे और स्वाध्याय करते तो छानबीन भी करते हैं इनकी उनके कथनों की उनके वचनामृतों की छानबीन भी करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत दिमाग लगाते हैं। तो क्या वो संज्ञा मिट गई क्या? इसलिए वो पत्र लिखा गया है। तो कहते हैं कि क्या है देखो सीधी परिणमन की बात आएगी। मुमुक्षुता यह है कि सर्व प्रकार की मोहाशक्ति से अकुला करके एक मोक्ष के लिए ही यत्न करना प्रयत्न करना प्रयास करना। एक वचन में बहुत बात लिखी कि तुमको अभी जो सांसारिक परिस्थिति है उसमें कहीं मोह के निमित्त बहुत हैं, कई प्रकार के मोह के निमित्त हैं। संक्षेप में कहे तो पंचेंद्रिय के विषय का विस्तार बहुत है, बाहर निकलो बाजार में क्या दिखने में आता है वही दिखेगा। स्टोर लगा के बैठे हैं ना सब, देख करके आ सकते हो कि ये चीज अच्छी है वो चीज अच्छी है वो चीज अच्छी है। तो मेरे ये परिणाम मेरे परिभ्रमण के कारण है, इसकी अकुलाट हुई क्या? मेरे मोहाशक्ति के परिणाम से मैंने अनंत संसार का परिभ्रमण किया, उसकी अकुलाट आई क्या? यह हमको रस पड़ गया। दो बात बनती है, प्राय तो रस ही पड़ता है, रस की जगह अकुलाट आई उलझन हुई तो उसका रास्ता निकलेगा। जीव मुंजाए तो रस तो निकले, सीधी बात है। नाक दाबो तो मोटू खुले। क्या हुआ? एक आदमी बीमार हो गया, ऐसा हो गया इसका मुंह नहीं खुलता था, जाम हो गया कोई कारण से, रगबत चढ़ गई होगी कोई नस चढ़ गए, मुंह नहीं खुलता था। अब क्या करना? ऑपरेशन करना क्या? शरीर से खुलना है नहीं तो प्रैक्टिकल कोई आदमी आ गया कि उसका नाक दबा दो ना मुंह खुल जाएगा। क्यों? कि हवा नहीं जाएगी। जब हवा ही नहीं जाएगी तो हवा के लिए दूसरा रास्ता मुंह खुलने का होता है, खुल जाएगा इतना जोर से अकुलाट होगी कि मुंह खुल जाएगा। ऐसे मोह से मोहाशक्ति से कौन छूटता है? जिसमें उसको अकुलाट होती है वो छूटता है, दूसरा नहीं। ये सीधी बात परिणमन की आई, उसमें वो बात नहीं आई कि मोह का विचार करना आसक्ति का विचार करना अकुलाट का विचार करना वो बात नहीं आई। देखो ये परिणमन की लाइन चालू हो गई, वरना तो पुथी पढ़कर पंडित हो जाएंगे। परिणमन कुछ आएगा, कहां से बात चालू हुई? परिणमन से बात चालू हो रही है मुमुक्षुता की, विचारों से नहीं हुई। कितना भी समझ में आया हो, क्या दोपहर को क्या प्रश्न किया था, कौन सा प्रश्न था, असर नहीं होती है क्या? वही समझ में बात आती है, विचार में बात आती है, असर क्यों नहीं होती? डॉक्टर साहब का ये जटिल प्रश्न है, तो कभी कभी क्या कहते हैं कि बात सच्ची लगती है, सम्मत करते हैं, और सच्ची लगती है तो दूसरों को समझा भी देते हैं, समझाते हैं, वांछनकार है, समझाते हैं। लेकिन हमको परिणमन होना चाहिए, इसके लिए क्या करें? उत्तर तो आया था कि अपने को इन्वॉल्व करो, अब इंजेक्शन देते हो, ये तो एक सुई जितना पॉइंट है, फिर भी कई लोग क्यों चिल्लाते हैं? मेरे को लगती है क्या, इनको लगती है क्या? उनको तो ज्ञान होता है कि सुई इधर इस तरह से इंजेक्ट किया, ज्ञान ही होता है। लेकिन मुझे लगती है ऐसा इन्वॉल्वमेंट आया कि बस बात खत्म, दुख हुए बिना रहेगा नहीं। गुरुदेव कहते थे, फरमाते थे, नारकी में नारकी के जो प्रतिकूल संयोग है इसका दुख नहीं है नारकी के दिल को, ये मेरा उदय है इसका दुख है। क्या ये उदय की उपाधि को ग्रहण कर लेता है, क्या करता है? उदय की उपाधि को ग्रहण कर लेता है। उसको उपाधि क्यों किया? उपाधि क्यों कहते हैं? फालतू की है इसलिए, क्या वास्तव में आत्मा में से कोई आत्मा में से कोई हिनाधिकपना होता नहीं, आता जाता नहीं, कोई लाभ नुकसान आत्मा को होता नहीं, लेकिन ये मेरा उदय है उसमें इतनी उपाधि में आ जाता है कि पूरा के पूरा वहां प्रतिबद्ध होकर के रुक जाता है। उसको कहते हैं बंधन, यानी बंध भाव। तो देखिए कि जिस ज्ञानियों ने, जिन ज्ञानियों ने सभी उदय को स्वप्नवत देखा, कैसा देखा? स्वप्नवत देखा, ऐसे जागृत रहे कि अरे ये तो एक स्वप्न गया, मुझे क्या हुआ? स्वप्न में कुछ जो भी घटना घटी थी उससे कुछ हुआ तो नहीं जागृत को? ऐसे वो जागृत में रहते हैं, आत्म जागृति में, और सभी उदय को स्वप्नवत देखे देखते हैं, उनको कुछ असर नहीं पहुंचते। ऐसे ज्ञानियों को नमस्कार नहीं करे तो क्या करे? हाँ? पूरा जितना भी लाइफ के जीवन के जितने भी प्रसंग है स्वप्नवत है और क्या है। एक स्वप्न के पीछे दूसरा स्वप्न, एक स्वप्न पूरा होता है दूसरा चालू होता है। उदय का वो उदय पूरा होता है, वो स्वप्न पूरा होता है, तीसरा चालू होता है। स्वप्नवत अज्ञान अवस्था में से जीव बाहर नहीं निकलता है। कभी किसी स्वप्न में राजी होता है, मानता है कि मैं सुखी हो गया। कभी किसी स्वप्न में नाराज होता है, दुखी होता है, मानता है कि मैं दुखी हूं। लेकिन है बिल्कुल स्वप्न, बाह्य प्रसंग से आत्मा को क्या लेना देना है। क्या मिलता है क्या जाता है बताइए। ऐसे यहां कहते हैं कि ये जो महाशक्ति के परिणाम होते हैं उससे कितना बड़ा नुकसान है चार गति के परिभ्रमण का, और परिभ्रमण में होने वाले जन्म मरण से लेकर के सभी प्रकार दुख, उनकी चिंता, उनकी अकुलाहट होकर के फिर एक मोक्ष के लिए ही प्रयास करना। एक मोक्ष लिया है, मोक्ष के लिए नहीं लिया। क्योंकि जहां तक एक मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं होता है वहां तक कुछ प्रयत्न संसार के लिए, कुछ प्रयत्न मोक्ष के लिए, ऐसे दो घोड़े की सवारी करने का प्रयास चलता है। लेकिन दो घोड़े पर कोई सवारी कर सकता नहीं है। दूसरा घोड़ा हाथ में आया ही नहीं है, संसार की सवारी चालू है। उस संसार के घोड़े पे ही अभी बैठा है, वहां से उतरा ही नहीं है। ये बात हो गई। इसलिए अपने चर्चा में लेते हैं कभी कि अगर हमें आत्मकल्याण करना है तो आत्मकल्याण को टॉप प्रायोरिटी में लिया के नहीं लिया वो पहले देखो। अगर टॉप प्रायोरिटी में नहीं लिया तो कोई न कोई बात मुख्य हो जाएगी और आत्मकल्याण गौण हो जाएगा। कोई न कोई मैंने उदय में, उदय अनेक प्रकार का आएगा पूर्व कर्म के अनुसार, हमको मालूम नहीं है कौन सा आएगा। एक सेकंड में कुछ न कुछ बन जाता है जो एक सेकंड पहले नहीं होता था, नहीं हुआ था। और जीव आत्मकल्याण को चूक करके परिणाम कर लेता है, बेसावधान हो जाता है। क्यों के लक्ष्य हुआ नहीं। लक्ष्य एक ऐसी चीज है, निर्धार से जो लक्ष्य हुआ वो हटता नहीं है हमेशा, और उसको स्मरण नहीं करना पड़ता। तो लक्ष्य में रहने के कारण से उदय में जीव लक्ष्य छोड़ करके फंसता नहीं, फंसता है थोड़ा बहुत, अभी तो मुमुक्षु है ना, और वो भी प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए थोड़ा बहुत फंसता तो है, उसको राग द्वेष नहीं होता है, ऐसा नहीं। जो भी उदय आता है उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है। लेकिन जिसको लक्ष्य है उनको एक दूसरी बात बनती है कि उसको जागृति, आत्म जागृति पैदा हो जाती है। जिसको एक मोक्ष के लिए ही प्रयत्न चालू हुआ उसकी जो अभिलाषा है, भावना है, वो भावना के विरुद्ध परिणाम उनकी मर्म स्थल को ठेस पहुंचाता है, उसके हृदय को ठेस पहुंचाता है, उसकी भावना को ठेस पहुंचाता है। क्योंकि भावना हमेशा बहुत कोमल होती है, वो सहन नहीं कर सकते अपने विरुद्ध परिणामों को, वो बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए इनके परिणाम ऐसे नहीं चलते हैं जैसे लक्ष्मीना वाले को चलते हैं, ऐसे नहीं चलते, उस प्रकार नहीं चलते, उनको इसका निषेध आ जाता है। अरे मेरी भावना से ये विरुद्ध क्या चल रहा है, ये क्या, तो इस तरह से मोक्ष के लिए ही प्रयत्न में जीव आता है, प्रयोग में आता है, सिर्फ विचार करके रुक जाता नहीं है। विचार मांचन करके जो प्रयास में नहीं लगता है वो तो विचार मांचन में रुक गया, क्या हुआ, वो तो विचार मांचन में इसलिए ज्ञानियों ने पुकार पुकार करके ये बात कही है। सुगानी जी ने कहा था कि सुनते ही प्रयास चालू हो जाना चाहिए, जिसको प्रयास चालू नहीं होता है उसका सुनना नहीं सुनने के बराबर हो जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा। हम समय और शक्ति को खर्च करते हैं और वो निष्फल होती है, होता है वो खर्च बेकार जाता है, ये बात हम क्यों बर्दाश्त करते हैं, करना नहीं चाहिए। परिभ्रमण की भयंकरता दिखनी ही चाहिए, तभी सच्ची अकुलाहट आएगी। मोह शक्ति के सामने जो अकुलाहट आती है वो तो तभी सच्ची आएगी। और फिर जीव कोई भी उदय में वो बात को देखेगा, कह रहे मैं उदय में बह गया, मेरे परिभ्रमण को देखा नहीं, क्या बात हुआ, तो ब्रेक लग जाएगी, उसको अपना परिभ्रमण दिखेगा उदय भाव में अपना, ये महाशक्ति के परिणाम में ना उदय भाव है, उसमें अपना परिभ्रमण दिखेगा, जैसा कोई बड़ा अजगर पड़ा हो, क्या हम एक सर्प को इधर सामने दीवार के पास में देखे ना, चढ़ता हुआ जाता हुआ, तो भी घबराहट होगी, कोई काला काला लंबा लंबा सर्प को देखें, 100 कदम दूर है समझ लो, 200 फीट दूर है और जा रहा है, तो भी घबराहट क्यों होगी। भाई लगता है कि अभी तो दूर है, जाता भी है, लेकिन वापस आएगा तो दूर इस तरह से जाने वाले सर्प से लोग भयभीत होते हैं, तो पास में हो गए तो क्या हो गए, देख लो अचानक पास में आ गया तो क्या हो गया, कितना भय हो जाएगा। ये तो अंदर में आया है, परिभ्रमण के जो महाशक्ति के परिणाम है वो तो अंदर में सब आ गया, दूर नहीं है, बहुत बड़ा अजगर आ गया ऐसा जब दिखे वो उदय में फंसेगा नहीं, पर उसका सच्चा प्रयत्न चलेगा। महाशक्ति के उलझन में, अकुलाहट में वास्तविक यथार्थ उदासीनता सहज उसके साथ जुड़ जाती है। अजगर दिखेगा उसको कहां रसाएगा, नहीं आएगा, सारे जगत से उदास हो जाएगा। वास्तव में जगत तो अपना उदय ही है, और कोई जगत है ही नहीं। जगत क्या है? अपना उदय, वही अपना जगत है। उदय से उदासीन हुआ वो सारे जगत से उदासीन हो गया, वो अध्यात्म की जननी है। अध्यात्म की जननी अकेली उदासीनता। कृपाल देव का 551 नंबर का 335 नंबर का पत्र है, 335 उदास परिणाम आत्मा को भजा करता है। भजा करे से हिंदी तो क्या हो गया इसका, ज्ञान दशा में उदासीनता आई है।
गुजराती भाषा में
उदास परिणाम आत्मा ने भजा करे से, तो सहज हुआ करता है भजना, उदास परिणाम की भजना चल रही है। एक पत्र में चार जगह वो बात लिखी है, एक ही पत्र में चार जगह, पत्र लंबा नहीं है। आप पेज का है हमारे परिणाम कहीं लगते नहीं, हमारे परिणाम कहीं लगते सोचते नहीं। सोचेंगे नहीं कहीं भी परिणाम, जहां अपना प्रयोजन नहीं हुआ वहां परिणाम कहां लगता है। उदासीनता के उदासीनता का प्रारंभ यहां से हो गया, महाशक्ति की अकुलाहट होगी वहां से चालू हो गया, क्योंकि परिभ्रमण दिख गया। फिर सभी मुमुक्षुता के स्तर पे, सभी स्टेज में ये उदासीनता और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है। और ज्ञान दिशा में तो तीव्र उदासीनता रहती है, तो उसको ज्ञान दिशा में थी बहुत उदासीनता रही है। मुंबई में व्यापार के लिए रहना होता था, फिर भी वो उदासीनता में रहते थे। मुंबई में रहते थे या उदासीनता में रहते थे? उदासीनता में रहते थे, मुंबई में नहीं रहते थे। तो लिखा एक पत्र में चार जगह लिखा, तो उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं, कोई बंधन नहीं। परिणाम प्रतिबद्धता को पाता ही नहीं, पामता ही नहीं, बस उसी को ही कहते हैं कि मुक्त है, ज्ञानी मुक्त है, ज्ञानी को मुक्त बोला है क्योंकि परिणाम इसके लगते। समय तो हो गया है इसे का स्वाध्याय और काम।